पिछले दिनों में हम कुछ सीरीज ले रहे हैं। हमने पिछली बार एक स्थिति को देखा था, एक व्यक्ति को देखा था। प्रभु यीशु मसीह का एक वचन था, और क्या वचन था? उसके दावा था। क्या था दावा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। तो किसके लिए कहा था उसने? लाजर के लिए कहा था। और हमने कुछ थोड़ा सा मार्था और मरियम के बारे में देखा था। लेकिन आज जो छठा क्लेम है, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना का 14 अध्याय और उसके 6 पद में कहा है, मार्ग जीवन और सत्य मैं ही हूं। 14 अध्याय उसके 6 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं यूहन्ना 12 अध्याय में कुछ बातों को आपके सामने लाना चाहूंगा। यूहन्ना 12 अध्याय, मैंने पिछली बार भी बोला था, केवल एक सुसमाचार है। चार सुसमाचारों में आती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। केवल एक सुसमाचार अर्थात यूहन्ना का सुसमाचार है, जिस सुसमाचार में लाजर के बारे में वर्णन है, लाजर के। और लाजर की दो स्थिति दिखाई गई है, दो स्थिति दिखाई देगी। पहली स्थिति जब आप 11 अध्याय में देखते हैं तो लाजर के बारे में क्या लिखा है? क्या 5 बातें देखी थी? लाजर बीमार है, लाजर सो गया है, लाजर मर गया है, लाजर सड़ गया है, लाजर बंधा है। 5 चीजों को हमने पिछली बार लाजर के बारे में देखा था, लाजर की कंडीशन। और ऐसी स्थिति में प्रभु यीशु मसीह ने उसको जीवन प्रदान किया। और हमने देखा था कि पाप मनुष्य के जीवन में यही कर देता है, पाप मनुष्य को रोगी बना देता है, पाप मनुष्य को सुला देता था, सुन कर देता है, फिर उसको नहीं मालूम चलता। एक नशेड़ा आदमी, उसको नहीं मालूम कि मैं नशा कर रहा हूं, अपने घर की बर्बादी कर रहा हूं। पत्नी को पीटने वाला आदमी पीटता जाता है, उसको चिंता नहीं, घर में क्या स्थिति है। एक दूसरी तरह का, उसको ना किसी की चिंता है। तो हमें देखा वो सुस्त बन जाता है, सो जाता है। मैंने पूछा था, क्या आपकी ऐसी दशा तो नहीं है, आप जागृत है नहीं? तीसरी बार हमने देखी थी, पाप किस रीति से ना केवल लो, लेकिन पाप के कारण मनुष्य मृतक हो जाता है। और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, ना केवल, लेकिन पाप सड़ा देता आदमी को, बदबू आती है उसके जीवन से, बदबू आती है और बंधन। तो ये 4-5 बातें पिछली बार हमने लाजर के जीवन देते। लेकिन जैसे ही हम 12वें अध्याय में आते हैं, आज प्रभु का धन्यवाद हो खासतौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने आज बपतिस्मा लिया है। और जिन्होंने बपतिस्मा, मैं बपतिस्मा में बात किसी से बात करता, एक दो जनों से मैंने बात करी, क्या आपको याद आ रहा आपका अपने बपतिस्मा दिन? जब भी किसी का बपतिस्मा का समय होता है मैं अपने दिन को याद करता हूं। 31 मार्च 1972 को मेरा बपतिस्मा हुआ था। और उस समय स्थिति दूसरी थी, हम प्रोसेशन में जुलूस बनाकर गोमती नदी गए थे। और गोमती नदी में वहां पर उस समय जुलूस बना, और जो भाई उस समय मेरे अगवा थे, भाई गैटी, आज मुझे खबर मिली, सुबह सुबह मैसेज आया, वो प्रभु में सो गए। उन्होंने मैं आत्मिक रीति से बहुत सहायता करी, वो आत्मिक हमारे मेंटर थे। सिस्टर रीना भी यहाँ पर हैं, वो जानती हैं, और आज इस मैं पास में जाऊँ, उन्होंने हमारी आत्मिक रीति से बहुत मदद करी। और प्रभु ने उनको अपने बुला लिया। सो उस समय वो कलीसिया के अगुवे थे और वो हमारे स्पिरिचुअल मेंटर भी थे। याद आता है और तब मैं सोचता हूँ, क्या मेरा वो कमिटमेंट, क्या मेरा समर्पण जो उस दिन मैंने किया था, आज बना हुआ है या नहीं बना हुआ? क्या मैं ढीला तो नहीं हो गया? क्या मैं सुस्त तो नहीं हो गया? और वो मुझे प्रेरित करता है और अधिक दोबारा अपने आप को प्रभु के हाथों में देने में, और ताकि मैं और अधिक आगे बढ़ सकूं। सो जो बपतिस्मा जिन्होंने लिया या आपने लिया है, बपतिस्मे से पहले हम मृतक थे। और जब एक व्यक्ति बपतिस्मे में खड़ा होता है और खड़े होने के बाद पानी में डाला जाता है और पानी में निकाला जाता है, 3 स्थिति होती है। खड़े होने के समय में हम इस बात की साक्षी देते हैं, मैं पुराने पाप के जीवन के लिए मैं मर गया, मैं मर गई। और हम इस बात की साक्षी सबके सामने देते हैं। और जब एक आदमी व्यक्ति मर जाता है तो क्या करा जाता है उसको? उसको गाड़ दिया जाता है। और वो पुराने जीवन को लेकर, पुराने इसीलिए इमर्शन बपतिस्मे का, डूब के बपतिस्मे का अर्थ है परमेश्वर के वचन के अनुसार है। बच्चों का बपतिस्मा छिड़काव वचन बपतिस्मा बाइबल नहीं सिखाती, वो बच्चों के ये परमेश्वर का वचन स्पष्ट सिखाता है। और इसलिए जब वो डुबा दिया जाता है तो वो स्थिति है कि वो पानी के अंदर है। मरने के बाद व्यक्ति को गाड़ दिया जाता है। तो पुराना जीवन, पुराना शरीर जो पाप का था, वो अब मसीह में होकर वो गाड़ दिया गया। कोई भी भाई जिसने आज बपतिस्मा लिया, आपने साक्षी दी है कि मैं पुराने जीवन को लेकर मसीह जीवन का, जो पुराना जीवन पाप का जीवन था, उसको लेकर अब ये पुराना जीवन दफना दिया गया। जब आपको खड़ा किया गया, पानी से आप निकले, तो आप इस बात की साक्षी दे रहे हैं, अब ये जीवन जो है नया जीवन है, अब ये नई ऋतु है। अब जब नया जीवन आ गया तो परिवर्तित जीवन आ गया। ठीक यही चित्रण, ठीक यही स्थिति हम लाजर के जीवन में देखते हैं। लाजर का जीवन 11 अध्याय में एक पाप का जीवन है, सड़ा हुआ जीवन है, मृतक जीवन है, बदबूदार जीवन है, बंधक का जीवन है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको उस मुर्दों में से जिलाया। अब एक परिवर्तित जीवन कैसा होना है वो लाजर के जीवन में हम देखते हैं, और ये उसका 12वें अध्याय में विवरण उसका, उसको हम 4-5 बातों को संक्षिप्त में देखना चाहेंगे। और सोच लीजिए आप भी जिन्होंने आज बपतिस्मा लिया है, या जो जिन्होंने ले चुके हैं या जो लेना चाह रहे हैं, क्या है 12 अध्याय। अब आ जाइए 12 अध्याय में। सो लाजर से कहा था पुनरुत्थान जीवन मैं ही हूं, 12 अध्याय उसका पहला पद। फिर फसह के 6 दिन पहले यीशु बेतनिया में आया जहां लाजर था। थोड़ी देर पहले भी हम देखते हैं लाजर था, लाजर अपनी बहनों के साथ था, उसकी बहनें रो रही थी, विलाप कर रही थी, लाजर कब्र में था, लाजर सड़ रह गया था, लाजर बीमार था। लाजर क्या संबोधन है, जिसे यीशु ने मृतकों में से जिलाया था, वही स्थान वही व्यक्ति, वही व्यक्ति जो व्यक्ति जो मृतक था या जिसकी स्थिति बताया गया। यह परिचय है किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर का वचन योना यहां पर लाजर का परिचय करा रहा है, और परिचय कराते हुए यीशु के साथ कि प्रभु यीशु मसीह किस जगह पे आए, उस जगह पे आए जहां लाजर बीमार था या सड़ रहा था या था मृतक था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या करा था, जिलाया था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिलाया था। अब लाजर जी गया है, अब लाजर जी उठा है, अब लाजर के जब जी उठा है तो उसकी आगे हम दूसरी बात देखते हैं दूसरे पद में। इसलिए उन्होंने वहां उसके लिए भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा करी थी। पिछली बार मार्था के बारे में हमने कुछ बातों को देखा था। उसके साथ जो भोजन के लिए बैठे थे उनमें से लाजर एक था, उनमें से लाजर। जब लाजर जिला दिया गया, लाजर को जिला दिया गया, अब लाजर कब्र में नहीं है, उसकी स्थिति बदल गई है, उसका स्थान बदल गया है, उसकी संगति बदल गई है। लाजर की फिर से दोहरा रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले लाजर बीमार था, लाजर मर रहा था, लाजर सड़ रहा था, बदबू आ रही थी जीवन, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको जीवन प्रदान किया। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। अब लाजर उस कब्र में नहीं है, उन बदबुओं के साथ उन लोगों के बीच में जिनकी और कब्र पड़ी है वहां नहीं है। लाजर का स्थान बदल गया, कब्र की जगह प्रभु के साथ मेज में है। लाजर की स्थिति बदल गई, अब वो सड़ नहीं है लेकिन उसमें जीवित प्राणी जीवन है। लाजर की संगति बदल गई, अब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति। मेरे प्रियो, जब हम बपतिस्मा लेके बाहर निकलते हैं ये जीवन की हमारी दशा होनी है। ये है, हमारी स्थिति बदलती है, हमारा स्थान बदलता है, हमारी संगति बदलती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, हमें देखना है हमारी पुरानी संगति नहीं है, पुरानी मित्रता खत्म हो गई, अब पुराना श्राद्ध का स्थान नहीं है, अब हमारा स्थान प्रभु और प्रभु के लोगों के साथ है। तो लाजर की स्थिति बदल गई, लाजर का स्थान बदल गया, लाजर की संगति बदल गई। भजनकार भजन 119 में लिखता है, 119 के 63 पद में, सामान्य 19:63, वो कहता है कि मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हैं उनके साथ मैं संगति करता हूं, वो मेरे साथी हैं। साथी बदल गए, मित्र बदल गए, अब मैं संसार के लोगों के साथ नहीं हूं, संसार की संगति में नहीं हूं, मैं परिवर्तित व्यक्ति हूं, प्रभु ने मुझे जीवन प्रदान किया है। इसलिए फिर उसके दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह ने हमें उठाया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिलाया। इफिसियों का 2:6 पद में, उसने हमें उठाया, उसने हमें मसीह के साथ जिलाया और स्वर्ग स्थानों में बैठाया, वो स्थान जहां स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान है, जिसके साथ उसके लोग विराजमान है। मेरे प्रियो, हमारा स्थान बदलता है, हमारी स्थिति बदलती है, हमारी संगति बदलती है, और ये मैंने देखना है। और इस विचार को लेके जिन्होंने आज बपतिस्मा लिया है या जिन्होंने पहले बपतिस्मा लिया है, उनको सोचना है आपका जीवन के स्थान संगति स्थिति क्या है, और आपको चुनौती आगे बढ़नी है। ना केवल लेकिन आगे चलकर देखिए बारह अध्याय में, अब वो कुछ और चीजों का वर्णन है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, केवल लाजर पर फोकस कर रहा हूं। 10 पद में, परंतु मुख्य याजकों ने लाजर को भी मार डालने की योजना बनाई। तो मुख्य याचकों ने लाजर को भी मार डालने की योजना बनाई, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी अलग होकर उस पर विश्वास करते। अब लाजर को मार डालने के प्रोसिक्यूशन शुरू हो गया, सतावनी शुरू हो गई, कट्टाई शुरू हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया था तो बपतिस्मा लेने के बाद शैतान उसको कहां ले गया? जंगल में ले गया। और अनेकों बार जब आप बपतिस्मा लेते हैं, संसार से अपने आप को अलग करते हैं, संसार के कार्य से अपने आप को अलग करते हैं, संसार के मत से अपने आप को अलग करते हैं, संसार के विश्वास से अपने आप को अलग करते हैं, संसार के रीति विधियों से अपने आप को अलग करते हैं, संसार के क्रियाकलापों से अपने आप को करते हैं, संसार के पहरावों से अपने आप को अलग करते हैं, तो यही स्थिति आ सकती है, लोग आपके विरोध में उसते सतावनी शुरू हो जाती है। अब यहां पर लोग लाजर को मारने के लिए तैयार हैं। क्यों तैयार हैं? लोग लाजर को देख रहे हैं, उसकी स्थिति को देख रहे हैं, उसके स्थान को देख रहे हैं, उसकी संगति को देख रहे हैं, उसकी वार्तालाप को देख रहे हैं, उसकी सब कुछ को देख रहे हैं। और यह सब कुछ देखने के द्वारा लिखा हुआ 11 पद में, क्योंकि बहुत से यहूदी आकर यीशु पर विश्वास कर रहे हैं। अब लाजर के द्वारा लोग यीशु पर विश्वास कर रहे हैं और लाजर के द्वारा लोग यीशु के पीछे आ रहे हैं। क्या मतलब है? जब एक व्यक्ति नया जीवन प्राप्त करता है, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, उसके जीवन की साक्षी बदलती है, उसके जीवन का चरित्र बदलता है, उसके जीवन की भावनाएं बदलती हैं, उसके जीवन की इच्छाएं बदलती हैं, उसके जीवन का स्वभाव बदलता है, उसके जीवन के कार्य बदलते हैं, और यह परिवर्तित व्यक्ति लोगों की आंखों को खोल देता है। कुछ है जो विरोध करते हैं, लेकिन कुछ है जो विश्वास भी करते हैं। मैं अपने जीवन की साक्षी दे सकता हूं, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया था, मुझे मालूम है कि निश्चित तो मैं होके जाना पड़ता है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन कुछ लोग प्रभु में आगे आए भी, विश्वास भी किया। आपके जीवन की भी साक्षी यही है। आप गांव में, देहातों में जहां कहीं रहते हैं, आप भी अपने जीवन क्या, ये दोनों प्रतिक्रिया होती हैं। एक है कि लोग ना खुश होते हैं, दूसरे हैं लोग खुश होते हैं और वो पूछते हैं क्या हो गया तुम्हारे जीवन में, तुम पहले अब नशा करते तब क्यों छोड़ दिया नशा तुमने, पहले तुम गलत स्थान पे आते तब नहीं जाते, पहले तुम गाली देते तब गाली नहीं देते, पहले तुम परिवार में तुम्हारे रोज झगड़ा होता तब परिवार में झगड़ा नहीं होता, क्या हो गया? तो कुछ लोग हैं जो व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन कुछ हैं जो प्रश्न करते हैं और उसके बाद सुसमाचार को सुनकर आ जाते हैं। ये दोनों, और ये लाजर के जीवन में हम देखते हैं। लाजर मैं संक्षिप्त में ले रहा हूं, लेकिन बहुत अधिक इस पर विचार किया जाता है, पर समय को ध्यान में रखते हुए। तीसरी बात 17 पद में देखिए, लाजर को कब्र से बाहर बुलाने और मृतकों में से जलाने के समय जो भीड़ यीशु के साथ थी वो उसकी साक्षी दे रही थी, वो भीड़। जब यीशु मसीह ने लाजर को जलाया तो लाजर को जलाते समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ए लाजर तू बाहर निकल आ, और जब लाजर बाहर निकला तो उसने कहा इसके बंद खोल के जाने दो उसको। तो बहुत सारी भीड़ थी, कुछ तमाशा देख रहे थे, कुछ सोच रहे थे कि शायद अगर ऐसा हो तो हम यीशु मसीह को पकड़वाएं, इस पर दोष लगाएं, तरह तरह की विचारधारा को लेके। और भीड़ आज भी मेरे और आपके पीछे रहती है। स्कूल में जाइए तो वहां भीड़ है, ऑफिस में जाइए तो भीड़ है, पड़ोस में जाइए तो वहां भीड़ है, गांव में जाइए तो भीड़ है, दुकान में जाइए तो भीड़ है, और भीड़ का सामना करना पड़ता है। बाइबल भरी पड़ी है इस भीड़ के सिद्धांतों से, बहुत प्रभु ने इसके विषय में बातें की और शिक्षा दी है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है भीड़ साक्षी दे रही है, ओ यीशु की साक्षी दे रही है, इसी ने लाजर को जलाया है, हमने लाजर को देखा है, लाजर पहले सड़ रहा था, लाजर पहले मर रहा था, उसके अंदर बदबू आ रही थी, लेकिन प्रभु ने उसको जीवन दिया है। प्रभु यीशु मसीह सचमुच है पुनरुत्थान और जीवन, उसने उसको जीवन दिया, उसने लाजर को परिवर्तित किया। मेरे प्रियो, मेरे और आपको जीवन को देखकर कितने लोग विद्रोह भी करेंगे, विरोध भी करेंगे, लेकिन कितने लोग गवाह भी बन जाएंगे, हमने जानते हैं इसको। अरे पहले तो गांव में रोज झगड़ा करता था, शराब पी कर इधर पड़ा रहता था, अपने घर में लड़ता था, घर की चिंता नहीं करता था। पिछले दिनों में एक बहन से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा बहन आप क्यों प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगी, क्यों आप चर्चा करने लगी? उन्होंने कहा जब ये पहले प्रभु को नहीं जानते थे, हमें कुछ नहीं मालूम था, इनका पैसा कहां आता था, कहां जाता था, इनको घर की चिंता नहीं रहती थी, हम लोगों की चिंता नहीं रहती थी, अपना कैसे जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन जब कलीसिया में भवन में आने लगे, हमने देखा धीरे धीरे इनके जीवन परिवर्तन हो रहा, और अब वो घर की चिंता करने लगे, हमारी चिंता करने लगे, परिवार की चिंता करने लगे, बच्चों की चिंता करने लगे, और सारे लोग इस बात को देखने लगे। मेरे प्रिय, उसकी पत्नी की साक्षी थी और प्रभु में आ गई। परिवर्तन जब आता है वो परमेश्वर की महिमा का कारण होता है, जब साकार परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं। यहां पर तो ये क्या है, भीड़ साक्षी दे रही, क्या मेरे और आपके जीवन को देखकर लोग आज साक्षी देते हैं? जहां पर ऑफिस में आप हैं, ये झूठ नहीं बोलता, ये चोरी नहीं करता, ये झूठी एप्लीकेशन नहीं देता, ये ऐसा नहीं करता, ये गाली नहीं देता, ये सच बोलेगा, ये सच बोलेगी, ये ऐसा करेगी, ये क्या आपकी साक्षी है? क्या लोग आपकी गवाही देते हैं? प्रभु यीशु मसीह के लोगों की साक्षी भीड़ देती है, लोग देते हैं। और मेरे प्रियो, जहां पर भी प्रभु ने मुझे और आपको रखा है, जहां पर भी लोग मेरे और आपके गवाह होने, लोग मेरे और आपके गवाह होने। और यहां पर तब उसके बाद आगे चल के एक और बात है, मैंने कहा ये एक परिवर्तित जीवन, जिसको बहुत संक्षिप्त में मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। 19 पद, इसलिए फरीसियों ने एक दूसरे से कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बढ़ता, देखो संसार उसके पीछे चल पड़ा है। अब लाजर के कारण क्या हो रहा था? संसार यीशु के पीछे चल रहा है, लाजर की गवाही है, लाजर का जीवन है, ये लाजर के जीवन का परिवर्तन है मेरे प्रियो, ये परिवर्तन है। जब एक व्यक्ति एक जीवन गांव में, देहात में, शहर में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, दफ्तर में, जब आपका जीवन सच्चाई के साथ परिवर्तित होता है, आपका उठना बैठना बदल जाता है, आपका बोलना चालना बदल जाता है, आपके व्यवहार बदल जाते हैं, आपके कार्य बदल जाते हैं, आपका पहनना ओढ़ना बदल जाता है, मेरे प्रियो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते हैं। और यहां पर लिखा है, देखो संसार उसके पीछे चल पड़ा है। ये लाजर का परिवर्तित जीवन था, ये लाजर का परिवर्तित जीवन था। कुछ समय पहले लाजर सड़ रहा था, और इसलिए यौना सुसमाचार में केवल ये बहुत सुंदर स्थल है, और भी स्थल, यौना इस तरह की बातें बहुत करता है। यौना 4 अध्याय में सामरिया स्त्री के बारे में वर्णन करता है, जब उसका जीवन परिवर्तित हुआ, पूरा का पूरा गांव उसके पीछे हो लिया। यौना की सोच है, विश्वास करो जीवन पाओ, परिवर्तन ये। तो लाजर के बारे में कितनी सुंदर, 11 अध्याय में उसकी दूसरी दशा है, 12 अध्याय में परिवर्तित स्थिति है। प्रश्न ये है, क्या सचमुच में मेरे और आपके जीवन में प्रभु परिवर्तन कर रहा है? क्या उसने मुझे और आपको बदला है? क्या मेरे और आपके जीवन में, या अभी भी मेरे कार्य के द्वारा, मेरे स्वभाव के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे परिवार में, पति पत्नी के बीच में, पत्नी पति के बीच में, बच्चों के बीच में, अभी भी कोई पुरानी चीज जो बदबू आ रही है, सड़ाट आ रही है, कोई चीज है या बदल रहे हैं, सोचना विचराना। सो यहाँ पर हम लाजर के बारे में कुछ बातों को मैंने संक्षिप्त में आपके लिए रखा, क्योंकि अब जब आज बपतिस्मा लोगों ने लिया है, तो उनके बारे में कि अगर हमने बपतिस्मा लिया, केवल एक पानी में से निकल कर नहीं आए, लेकिन ये स्थिति हमें दिखाई देनी है। और जो आने वाले दिनों में सोच रहे हैं बपतिस्मे के लिए, कुछ लोगों को हमें रोकना पड़ा है समय के कारण, परंतु प्रभु ने चाहा आने वाले दिन करेंगे, लेकिन अच्छा है कि वो और सोचें, विचार करें और आगे बढ़ें, ताकि ये कार्य हो सके। अब आइए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा, 12 अध्याय के बाद बहुत कुछ है, 12 अध्याय के बाद, अब 12 अध्याय थे प्रभु यीशु मसीह जो है भीड़ में थे, लोगों के साथ थे, लेकिन यौना 13 अध्याय से यौना 17 अध्याय तक प्रभु यीशु मसीह वास्तविक रीति से 13, 14, 15, 16 4 अध्याय में यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ हैं और शिष्य से बातचीत कर रहे हैं, और शिष्य से बात करते हुए तब 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं। आइए मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा, 13 अध्याय से मैं पढ़ूंगा, 13 अध्याय के 36 पद में, यौना 13 अध्याय 36 पद। शमान पत्रस ने उससे कहा, प्रभु तू कहां जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहां मैं जाता हूं तू अभी वहां मेरे पीछे नहीं आ सकता, परंतु उसके बाद तू आएगा। पत्रस ने उससे कहा, प्रभु मैं अभी तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण दे देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा, मुर्ग बांग ना देगा। तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं आकर तुम्हारे लिए जगह तैयार जाकर तुम्हारे लिए तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, और जहां मैं जा रहा हूं तुम वहीं का मार्ग जानते हो। जहां मैं जा रहा हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। तुमने उससे कहा, हे प्रभु हम नहीं जानते तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंचता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, अब से उसे जानते हो और उसे देखा भी है। 13 अध्याय प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ बैठकर बात करते हैं, और बैठकर बात करने के द्वारा अब प्रभु इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अब समय आ रहा है, निकट आ रहा है। वो कैसा समय? उसने इस बात को पहले ही बोल दिया था कि उसने 12 अध्याय के 23 पद में कह दिया था उसने, और यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, उससे कहा, समय आ पहुंचा है कि मनुष्य का पुत्र महिमान्वित हो। अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने लिए कह रहे हैं, अब वो समय आ गया है कि परमेश्वर का पुत्र जो यीशु है वो महिमा को प्राप्त करे और महिमा प्रदर्शित करे। वो महिमा जो उसके क्रूस पर प्रकट होने वाली थी, वो महिमा जो उसके मृत्यु के द्वारा संसार में आने वाली थी, वो महिमा जिसको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे। अब चेलों का मन तैयार हो रहा है। तब जब ये हो रहा है तो यीशु मसीह ने कहा, शमौन ने पूछा, प्रभु बात कर रहे हैं, प्रभु कहने लगे मैं जाने वाला हूं, मैं जाऊंगा। तो पहले सबसे बड़े बोलने वाला था वो, प्रभु तू कहां जा रहा है, तू कहां जाएगा? प्रभु ने उत्तर दिया, जहां मैं जाता हूं तू अभी वहां मेरे पीछे नहीं आता। कहां जा रहा था प्रभु यीशु? अब 13, 14, 15, 16 अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने शिष्य को वो तैयार कर रहा है कि किस तरह से मैं संसार को छोड़कर जाऊंगा लेकिन तुम्हें संसार में रहना होगा, किस प्रकार से उस कार्य को जो पिता ने मुझे मेरे हाथ में दिया है उसको मैं पूरा करके, लेकिन तुम्हारे हाथ में कुछ काम छोड़कर जाऊंगा, उसको तुम्हें पूरा करना है। क्रूस पर बलिदान का काम प्रभु यीशु मसीह का है, और कोई नहीं होता उस क्रूस पर जो यीशु ने बलिदान किया। लेकिन हाँ, मनुष्य को अपने क्रूस को उठाकर चलना पड़ेगा और सुसमाचार को पहुंचाना पड़ेगा, और कलीसिया की स्थापना होगी और कलीसिया आगे बढ़ती जाएगी। वो कार्य उसने शिष्य को और आज विश्वासी को दिया है। लेकिन जब वो इस बात को कह रहा है, पत्रस ने उसे कहा, प्रभु मैं अभी तेरे पीछे क्यों नहीं आता, मैं तो तेरे लिए प्राण देने के तैयार हूं। प्रभु जानता था कि पत्रस आगने वाले दिनों में क्या करेगा, पत्रस प्रभु का इनकार करेगा। लेकिन प्रभु के इनकार के बाद प्रभु यीशु मसीह यह भी जानता था पत्रस पुनः अंगीकार करेगा, रोएगा, पश्चाताप करेगा, क्षमा मांगेगा और फिर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा, और अंततः वो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को भी निछावर करेगा। प्रभु जानता था, प्रभु सर स्वामी परमेश्वर है, सबको जानता है, सारी चीजें। लेकिन 14 अध्याय में जब हम आते हैं तब प्रभु कहता है, प्रभु 14 अध्याय में कहते हैं, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। अब सोचिए, यहां पर प्रभु शब्द कहे तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। इससे पहले हम बार बार देख रहे हैं प्रभु का हृदय व्याकुल है। 11 अध्याय उसके 33 पद में, जब यीशु उसे उनके साथ आए, यहूदियों को रोते देखा तो वो आत्मा में अत्यंत व्याकुल और दुखी हुआ। 12 अध्याय 27 पद में, अब मेरा जी व्याकुल हो उठा है, क्या मैं ये कहूं? प्रभु यीशु मसीह कह रहा, अब मेरा जी व्याकुल हो चुका है। 13 अध्याय उसके 31 पद में, जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हो और परमेश्वर की महिमा उत्पन्न हो। लेकिन आगे चल के 14 अध्याय उसके 1 पद, क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उससे पहले यीशु स्वयं व्याकुल है, बार बार कह रहा है कि मेरा मन व्याकुल है। लेकिन अब यहां पर शिष्य को कह रहा है कि तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। दोनों में फर्क है। यह व्याकुलता प्रभु यीशु मसीह की उस प्रेम के कारण है या उस परिस्थिति कारण जो मनुष्य के सामने वो देख रहा है। लेकिन अब वो जान रहा है कि मैं जाऊंगा तो ये लोग बेचैन होंगे, ये लोग परेशान होंगे, शिष्य लोग, और वो शिष्य को संतावना देना चाह रहा है। और वो कहता है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी। क्यों? जिसने पुत्र को देखा उसने पिता को देखा। पुत्र के द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं, पुत्र के द्वारा परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। पिता और पुत्र बार एक है, बार बार इस बात को कहते हैं। लेकिन तब वो आगे चल के कहता है, मेरे घर में, वो कह रहा है मैं जाऊंगा। दूसरे पद में कहता है, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुम्हें कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। मैं एक और काम करने जा रहा हूं। कहां? कैसे जगह? जगह पहले उसको क्रूस पर जाना है। क्रूस पर जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, जी उठेगा और सर पर पहुंचाया जाएगा। तो ये सेंटेंस में वो पूरी रीति उस कहानी को या उस कथा को या उस योजना को जो मनुष्य के छुटकारे की योजना है उसको वो इस कथन में पूरी रीति से व्याख्या कर रहा है। वो कह रहा है क्योंकि यदि मैं जाकर तुम्हारी जगह तैयार ना करूं फिर मैं आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा जहां मैं हूं, तुम मेरा हूं, फिर मैं आऊंगा। ये द्वितीय आगमन है। प्रभु जाएगा फिर आएगा, और इसीलिए प्रेरित काम उसके पहला अध्याय उसकी 11 पद में जब वो स्वर्गदूत देख रहे थे, देखो जैसे यीशु नासरी को तुम स्वर्ग से उठाओ जाते देखते हो वैसे ही एक दिन वो पुनः आएगा। और इससे पहले स्वर्गदूत इस बात की भविष्यवाणी करते प्रभु यीशु मसीह स्वयं भविष्यवाणी कर रहे हैं। क्या उसकी योजना है? उसकी योजना, उसके बीच में कुछ होगा, उसके बीच में प्रभु घर तैयार करेगा। दो घर हैं, एक घर जो परमेश्वर स्वर्ग पर तैयार कर रहा है जिसके लिए मुझे और आपको लेकर आएगा, एक घर है जो पृथ्वी पर तैयार कर रहा है, वो घर उसकी कलीसिया है जिसमें वो वास करता है, वो मुझ में और आप में वास करता है, और मुझ में और आप में वास करके वो अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहा है। उस कलीसिया को वो एक दिन लेने के लिए आएगा। प्रभु का बलिदान क्रूस पर केवल उद्धार मात्र के लिए नहीं है, लेकिन उद्धार के साथ संपूर्ण योजना में कि परमेश्वर अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने आज बपतिस्मा लिया, जो आज कलीसिया के सदस्य बने। ये सच है, और हम एक देह होकर के, एक दुल्हन होकर एक साथ जुड़े हैं और उसके द्वितीय आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। प्रभु इस बात को स्पष्ट रूप से कहता है, लेकिन चार पद में वो कहता है, तब उसके बाद और जहां मैं जा रहा हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम वहां का मार्ग जानते हो? प्रभु यीशु मसीह ने बार 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 शिष्य को कहा था कि क्या परमेश्वर पिता की योजना, क्यों मैं संसार में आया हूं? मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं अपने आप को तुम्हारे पापों के लिए बलिदान करूं। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? मनुष्य तो पापी था, मनुष्य ने पाप किया था, पाप के कारण मृत्यु उसके ऊपर आ गई थी, पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गया था, पाप के कारण अदन की वाटिका में परमेश्वर के घर से, परमेश्वर की उपस्थिति से मनुष्य अलग हो गया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, वो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया और बार बार उसने सेवा में कहा कि अवश्य कि मैं जाऊं उस कार्य को पूरा करूं। ओ तुमने सुना है, तुमको बताया है कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाए, मारा जाए, गाड़ा जाए, तीसरे दिन जूटे। तुमने बार बार मैंने तुमको बताया, तुम जानते हो लेकिन तुम विश्वास नहीं करते। तुम जानते हो, तुमको बताया मैंने, और प्रभु ने बार बार इस बात को अपने शिष्य को कहा था, मैं मारा जाऊंगा, मैं पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जूटूंगा, बार बार यीशु में। और इसलिए यीशु कह रहे हैं कि तुम जानते हो लेकिन फिर भी तुम जानने के बाद भी ना समझो, कह रहा है तुम जानते हो। और तब उन्होंने कहा, क्या कहा? थोमा, थोमा जिसको हम जानते हैं कि वो बहुत जल्दी बोलता है और अविश्वास व्यक्ति था, दो विचारों में लेकर चलता था, उसके साथ कहता है थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु हम नहीं जानते तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने, हम नहीं जानते, अभी तक हम समझ नहीं पाए। अरे जब वो थोमा यहां पर आ रहा था, इस बेते में आ रहा था, और उसने कहा, लोगों ने खबर दी लाजर मर गया है और लाजर ऐसा हो गया है, और जब जान लगा तो ये थोमा कहता है चलो तुम भी चलो, हम भी उसके साथ वहां मरने चले। क्यों? उसको डर था कि वहां जाएंगे तो यहूदी हमारा पीछे करेंगे, पथराव करेंगे, हमें मार डालेंगे। और बार बार थोमा इसी बात को इसी तरह से करता था, उसके मुंह से ये निकलता था, वो कहता मुझे तो नहीं मानो भाई, हमें तो नहीं मानो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तब कहा, तब यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा कि तो मार्ग हम कैसे जाने? तब उसने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। और तब उसने इस बात को बताया कि यीशु मार्ग है, यीशु सत्य है, यीशु जीवन है। यीशु जीवन है इसलिए यीशु में जीवन है, यीशु सत्य है इसलिए उसमें सत्य है, यीशु स्वयं मार्ग है इसलिए हम उस मार्ग के द्वारा उसके पास जाते हैं। और मेरे प्रियो, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो स्वर्ग परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया, उसने उस चक्र को, उस क्रिया को पूरा किया, इस पृथ्वी पर आया, मनुष्य के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, लोगों को दिखाई दिया और फिर उसी स्थान पर जाकर बैठा जो स्वर्ग स्थान है। स्वर्ग से मनुष्य बनकर आया और स्वर्ग पर आज विराजमान है, इसलिए वो कह सकता है मैं मार्ग हूं और कोई नहीं, क्योंकि जो को उस पर विश्वास करेगा, जो उसके पच्चीनों पर चलेगा, जो उसके पीछे होगा, वो उसमें होकर उस स्थान तक पहुंचेगा जहां प्रभु यीशु मसीह आज विराजमान है। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह संसार में मुझे और आपको स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए आए, स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए आए, और स्वर्ग किसी और के द्वारा नहीं। मेरे प्रियो, क्या आपने मरने के बाद किसी भी व्यक्ति के लिए लिखा हो सुना है कि नरकीय व्यक्ति? क्यों डॉग, चारू, चोर, डाकू, फलाना फलाना, सबको कितने जिसको देखा मर जाता तो अच्छा, मर जाता तो अच्छा, मर जाता तो अच्छा है, लेकिन जब मर गया तो उसके नाम स्वर्ग फलाना। लेकिन केवल मनुष्य जाएगा स्वर्ग, स्वर्ग और नरक मनुष्य, जानवरों के लिए नहीं है। जानवर, किसी जानवर के लिए सुना है कभी फलाना फलाना स्वर्ग है? किसी जानवर ने गाड़ी में टकरा के मर गई हो या मर गया, जो कोई भी स्वर्ग हो? नहीं नहीं, क्यों समझना है इस बात को, इन तर्कों को समझना है। वास्तविकता क्या है? मनुष्य है, इसीलिए बाइबल कहती है मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना उसके लिए ठहरा दिया गया है। इस जीवन में यदि आपके जीवन पाप से छुटकारा नहीं है तो उसके बाद नहीं है, चक्र चलने की जरूरत नहीं है। मनुष्य का एक बार मरना और न्याय होना ठहरा दिया गया। और इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सच मुझे वो स्वर्ग का मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का मार्ग है। इसलिए पहला क्रंथियों का 15:3-4 में प्रभु यीशु मसीह के लिए पौलुस बोलता है कि वो मनुष्य बनकर आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। एक विश्वास ही प्रभु पर विश्वास करने द्वारा उस स्वर के स्थान तक उसके लिए पहुंच सकता है। प्रभु यीशु मसीह में जीवन है, रोमियों उसका 5:21 में, जैसे पाप ने मृत्यु को संसार में पहुंचाया वैसे अनुग्रह धार्मिकता के द्वारा अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हुआ। पाप के द्वारा मृत्यु आ गई, रोमियों उसका 5:21, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह धार्मिकता के द्वारा अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं प्राप्त हुआ, उसमें जीवन है। क्या मृत्यु के बाद जीवन है? इसका आंसर केवल यीशु के पास है। और उत्तर क्या है? हम कामों के द्वारा ईश्वर नहीं पहुंचते, बपतिस्मा तो विश्वास करने के बाद स्वर्ग जाते हैं। अगर आप कोई ऐसा है जिन्होंने विश्वास किया और कल मर जाए, किसके बालों में, मैं भी मर सकता हूं, डरिए नहीं, मृत्यु से मत डरिए, अच्छा दिन है, मृत्यु का दिन अच्छा दिन है, समझ रहे हैं, संसार से छुटकारा, प्रभु के राज में आराम से रहना। लेकिन आपके पास निश्चितता होनी चाहिए कि अगर आज मेरी आंख बंद हो जाए मैं परमेश्वर के राज में होऊंगा, होंगी। कैसे होगा? जितने अपने आप को अपने पापों से पश्चाताप किया, मन फिराया और प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उसको अपने हृदय का राजा बनाया, स्वामी बनाया, अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दिया, उनके लिए ये आशा है कि मृत्यु के बाद जीवन है। और इसलिए न केवल, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सत्य है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब पिलातुस के सामने थे, हेरोदेस के सामने थे, उसने कहा मैं इसलिए आया हूं, यूहन्ना उसका 18:37 में, मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं सत्य की साक्षी दूं, सत्य की गवाही दूं। यीशु सत्य है। और इसलिए जब उसने कहा मार्ग जीवन सत्य मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंचता, वो कह रहा थोमा देख, अगर तुझे पिता के पास पहुंचना है तो तुझे मेरे रास्ते से होकर चलना है, जैसे मैं कदम कदम आगे मिलकर चला रहा हूं, और मैं इसीलिए आया हूं ताकि पिता को कार्य पूरा करके उस पिता के पास जाऊं। तू मुझ पर विश्वास कर, तू मुझे अपने जीवन को अपना ले, तू मेरे अपने जीवन को ले ले, तू मेरे पीछे चल, तो निश्चय तू उस स्थान पर पहुंच जाएगा जो स्वर्ग स्थान है। और इसलिए उसने कहा कि मैं जीवन हूं। मेरे प्रियो ये सच है। और तब उसने कहा बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंचता, और कोई मध्यस्थ नहीं इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग के नीचे, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकें। प्रेरित काम उसका 4:12। पहला तीमोथी 2:2 में केवल यीशु ही मध्यस्थ है, केवल वही एक मध्यस्थ है मेरे प्रियो, और कोई मध्यस्थ नहीं। यशायाह 59:10 में कहता है कोई मध्यस्थ नहीं है, 59:59 में वो कहता है कोई मध्यस्थ नहीं, कोई शांति का देने वाला नहीं, कोई न्याय का देने वाला नहीं। उसका उत्तर नए नियम में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है, प्रभु यीशु मसीह शांति का देने वाला है। यशायाह 59:59 में 5 प्रश्न हैं, 5 चीजें हैं जो वो कहता है नहीं है, नहीं है, नहीं है, नए नियम में यीशु कहता है, है। इसलिए यीशु पर विश्वास करो, इसलिए यीशु पर विश्वास करो, इसलिए यीशु के पीछे चलो, इसलिए यीशु को अपने जीवन में अपनाओ, इसलिए यीशु पर विश्वास करके उसको अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करो, अन्यथा कोई जीवन नहीं मेरे प्रियो। इसलिए वो कहता है, और वो कहता है यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, अब से उसे जानते हो और उसे तुमने देखा। कैसे देखा है? जिसने पुत्र को देखा उसने पिता को देखा। पुत्र इसलिए संसार में आया ताकि उसके द्वारा हम पिता को जान सकें। पुत्र इसलिए आया संसार में उसको देखकर हम पिता को देख सकें। पुत्र इसलिए आया ताकि हम उसके गुण, उसके चरित्र, उसके स्वभाव, उसके जीवन को देख करके हम परमेश्वर को पहचान सकें। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या चाहता है। और इसलिए यीशु ही एकमात्र जीवनदाता है मेरे प्रियो। 6 क्लेम था यीशु मसीह ने कहा, बहुत सारी और बातें हैं जो हम देख सकते थे, लेकिन खास बात यह प्रभु यीशु मसीह स्थान पर जाने वाले हैं, जाके उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान करेंगे, मारेंगे, जाएंगे, गाड़े जाएंगे, और फिर जाकर वो मेरे और आपके लिए अभी वो स्थान तैयार कर रहे हैं। लेकिन पृथ्वी पे ये कलीसिया तैयार हो रही है, और इस दुल्हन को, इस कलीसिया को एक दिन आके लेके जाएंगे, और अनंत काल तक हम उसके साथ राज करेंगे। ये सबसे आनंद की बात है मेरे भियो। चाहे 10 साल बाद मुझे जाना हो, चाहे 5 साल बाद मुझे जाना हो, चाहे 1 घंटे बाद मुझे जाना हो, चाहे कितने साल बाद जाना, मैंने जाना। मैं अपने कल को नहीं जानता, लेकिन मैं उसको जानता हूँ जो मेरे कल को जानता है। मैं अपने कल को नहीं जानता, लेकिन मैं उसको जानता हूँ जो मेरे कल को जानता है। क्या आप उसको जानते हैं जो आपके कल को जानता है? क्या वो आपका स्वामी है? क्या वो आपका प्रभु है? क्या सचमुच में आपका वो जीवन है? क्या आपके जीवन में ये आ गया? कब वो दिन था जब आपने यीशु मसीह को अपना मार्ग, सत्य, जीवन बना लिया? क्या सचमुच में आप उसके मार्ग को, जीवन को, सत्य को समझते हैं या चलते हैं, जाना चाहते हैं? यीशु के प्रति आपका प्रेम और आपका समर्पण कितना है मेरे प्रियो? काश आज के दिन प्रभु मुझे और आपको स्मरण दिलाए उस दिन को जब आपने साक्षी दी थी। शायद आप इधर उधर हो रहे हैं, लौट आइए, पुनः अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, और एक नई आशा से, सच्चाई के साथ प्रभु के पीछे हो लीजिए, और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करते हैं, आप मेरे मार्ग हैं, आप मेरे सत्य हैं, आप मेरे जीवन हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे।